राहु ये प्रवचन परमसद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 1992 को सायंकाल लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युज्य च। भगवान ने कहा है कि तस्मात् पहले श्लोक आया कि अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। सातवें अध्याय के अंत में भगवान ने बात कही, उस पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, तो वहाँ किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूषण किम प्रोत्तम अजीवन किम उच्चते अधियज्ञ कथम गोत्री। सात ही प्रश्न है और सात ही प्रश्नों के सात उत्तर है और सात ही श्लोकों में आठवें आत्मा। तो अनंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं, इसका उत्तर देते हैं कि अंत काल मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो मेरे को प्राप्त हो जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये पांचवें श्लोक में कहा, ऐसे कह कहते कि मेरे लिए ही नहीं है, स्मरण भाव चलते कलेवरम, जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ अंत में शरीर छोड़ता है वो उसी उसी को प्राप्त हो जाता है, ये सामान्य बात है। मेरे लिए ऐसी नहीं, मेरे को याद करता हुआ जाए तो मेरे को प्राप्त होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, सामान्य कानून है। यंग यंग वापि स्मरण, जिस जिस स्मरण करे, अंतकाल में स्मरण कर से ही छोड़ता है तो अनंत मति है, उसके अनुसार उसकी गति होती है। तस्मात् सर्वेषु, इस वास्ते सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, सब समय मेरा स्मरण कर, क्योंकि अंतकाल का समय कोई अलग रखा हुआ तो नहीं है, वे अंत समय ये होता है, अंत समय ये आया है, ये सब समय में से अंत समय आ जाएगा। ये सात बार है, ये सोलह तिथि है, ये एक बार है, मैंने एक अधिक मास 13 महीना है, ये इनमें कभी न कभी आएगा अंतकाल, तो पता नहीं लगते कब किस का अंत आ जाए। तो सर्वे सुकार सुमा मनुस्मर, सब समय तो मेरा स्मरण कर, तो सब में से वो अंतकाल कभी आ जाएगा। सर्वे सुकार सुमा मनुस्मर युद्ध सो, और युद्ध से का तात्पर्य है कि जो सामने काम आ जाए वो करो। अर्जुन सामने युद्ध था तो मेरा स्मरण तो सर्वेशु कालेषु सब समय में करना, और युद्ध सो युद्ध करना है वो समय समय पर, तो काम धंधा जो जो कर्तव्य आ जाए वो समय समय पर करो, और सर्वेशु कालेषु महामनुष्य सर्वेश युद्ध नहीं होगा, सब समय में युद्ध नहीं होगा, युद्ध मौके मौके पर होगा। सर्वेश कालेश महामनुष्य, सब समय तो मेरा स्मरण कर, तो सब समय में स्मरण करता है तो अंधकार के समय भी शुभ समय में से आता है तो अंधकार में मेरा स्मरण हो जाएगा। सब समय मेरा स्मरण करे तो कभी आ जाए अंधकार। तो अंधकार में स्मरण करने से उसकी प्राप्ति होती है। इस वास्ते भाई बहनों को चाहिए कि हम तो सदा भगवान का स्मरण करें। तो सदा स्मरण करें तो फिर भगवान का स्मरण करें। काम कैसे करें कि वो भगत भक्त पर कर सब समय भगवान का स्मरण करते हुए काम करें। तो इस तीन तरीके हैं। काम करते हुए भगवान को याद करें, भगवान को याद करते हुए काम करें और भगवान का ही काम करें। तीन तरीके हैं। मन भगवान का स्मरण करते हुए काम करें, कोई काम हो भगवान की स्मृति छोड़े नहीं। जैसे मनुष्य कोई काम करो श्वास लेता ही रहता है, उसके लिए अलग समय नहीं निकालता कि थोड़ी देर श्वास ले लें फिर काम करेंगे। वो सब समय में लेना होगा कि वो जीवन है, श्वास नहीं ले तो हम जी नहीं सकते। तो श्वास तो लेते ही रहते हैं हर समय, और काम तो भगत पथ करते हैं, कभी भोजन करते हैं, कभी जल पीते हैं, कभी संसार का काम करते हैं, कभी पारमार्थिक साधन करते हैं, कभी घर का धंधा करते हैं, कभी खेत का, कभी गांव का, कभी काम करते हैं। तो सर्वे सुकाले सुमाम भगवान का स्मरण सब समय होना चाहिए। तो सब समय स्मरण करते हुए काम करें, एक तरीका तो ये सब समय। तो भगवान का स्मरण करते हुए काम करें, इसमें भगवान का स्मरण तो होगा मुख, और काम होगा कौन। और काम करते हुए भगवान का स्मरण करें तो सब समय में काम करते हुए भगवान का स्मरण करें तो काम करना हुआ मुख्य, भगवान का स्मरण हुआ गौ। तो स्मरण भगवान करें तो फिर काम धंधा कमजोर हो जाएगा, काम धंधा भी सच कर भगवान का स्मरण कर कमजोर हो जाएगा। तो फिर एक तरीका तीसरा है कि काम को भगवान का ही समझें, भगवान का समझे, सब काम भगवान के हैं। तो फिर भगवान का ही काम करते भगवान की यादगिरी रहती है। जैसे सज्जन अपने कन्या का लगन करते हैं तो वो कन्या को याद रखते नहीं है, याद रहता है भाई कन्या दान करना है, अमुक लगन में कन्या का दान करना है। तो क्यों से मिलते हैं, आप आओ, घर की सब सफाई करते हैं, घर को तैयार करते हैं, आदमियों को बहुतों को निमंत्रण देते हैं, सब काम करते हैं। उद्देश्य रहता है कि भाई आप लोग पधारे, यहाँ पधारे, हमारे कन्या दान करना है, तो आप लोग समारोह में आवे, बुलाते हैं। तो कन्यादान करना मुख्य रहा तो कन्यादान की बात हरदम याद रहती, कन्या को याद रखते नहीं है। कोई कन्या को याद रखना है बिल्कुल नहीं, पर याद रहती है कन्या काम करते हैं तो। कोई मिलते हैं तो आप भी हमारे आना, यहाँ पर हमारे अमुक समय में कन्यादान होगा, आप लोग पधारे। जितने संबंधी प्रेमी अपने हैं वो बुलाते हैं। तो कन्यादान का काम हरदम याद रहता है, ऐसे ही भगवान का स्मरण करना याद रहता है। तो भगवान का ही काम करते हैं, संसार का काम है वो संसार का नहीं है किंतु भगवान का है। सच्ची बात है, आपसे पहले आपके पिताजी करते थे, उनसे पहले उनके पिताजी करते थे, उनसे उनके पिताजी, ऐसे पीढ़ियों से काम करते चले आ रहे हैं। तो ये काम तो धंधा तो चलता है, पर अपना अपना काम क्या है। अपना जन्म लेने के बाद संसार का काम करने के लिए जन्म नहीं लिया है, जन्म लिया है भगवत स्मृति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति करना है। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भोग भोगना और संग्रह करना, इसके लिए मानव शरीर मिला नहीं है। और शरीर भाई का हो चाहे बहन का हो, मानव शरीर है, इसमें एक विलक्षण बात है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो एक बात हमने संतों से सुनी है कि ये आरंभ कब हुआ जन्म, तो कब क्या हुआ है, मनुष्य जन्म से शुरू हुआ है काम, और अंत कब होगा, मनुष्य जन्म में, मनुष्य जन्म में आदि आरंभ हुआ है, मनुष्य जन्म में अंत होगा। क्योंकि मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के फल और लोगों को भोगे जाते हैं, पाप कर्म है उनका नरकों में भोगा जाता है, उसे कुछ पाप कर्म कम है तो 84 लाख जोनी में भोगा जाता है और फिर स्वर्ग में भोग जाता है। विभिन्न लोग तक के भोग है, वो सब मनुष्य जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल है। तो मनुष्य जन्म के कर्मों, मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का फल हर एक जगह भोगना पड़ता है। तो इस बात से उसको कर्म योनि कहते हैं, कर्म किसमें करना है, भोगना है उस योनियों में। परंतु जो सज्जन ठीक समझने वाले हैं वो कर्मयोनि न करके साधन योनि कहते हैं। मनुष्य वो साधन करने के लिए ही है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है। भोग भोगना तो हर एक कर्म में होता है, हर एक योनि में होता है। सुखम इंद्रियकम राजन स्वर्गे नरक योगा, इंद्रियों से होने वाला सुख स्वर्ग में भी होता है, नरक में भी होता है, 84 लाख जोड़ी में भी होता है, भूत प्रेत पिशाच जोड़ी में भी होता है। इंद्रियों से होने वाला सुख शब्द स्पर्श रूप रस गंध का भोग है। सुखम इंद्रियकम, इंद्रियों का होने वाला स्वर्गे नरक योगा, नरकों में स्वर्ग होता है। तो कैसे होता है भी, इंद्रियों से होने वाला सुख वो कैसे मिलता है, तो ये बड़ी विचित्र बात कही कि प्राणी नाम तद यथा दुखम, जैसे प्राणी को दुख भोगना पड़ता है तो दुख के लिए कोई अलग समय निकालना नहीं पड़ता, भोगना पड़ता है, वो तो आ जाता है। प्राणी नाम तद यथा दुखम, जैसे दुख स्वतः आता है ऐसे सुख भी स्वतः आता है। एक बड़ी मार्मिक बात बताई है, सुख के लिए उद्योग करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे पुराने किए हुए कर्मों का फल है, बुरे कर्मों का फल है वो रोग आदि होता है, दुख आता है, और अच्छे कर्मों का फल है वो अनुकूल परिस्थिति आती है, उसमें आता है। तो ये पूर्व किए हुए कर्मों का फल अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उसमें सुख दुख नहीं आता है, कर्मों से परिस्थिति बनती है, वो सुखदायी परिस्थिति बनती है, दुखदायी परिस्थिति बनती है, उसमें भोग हम दुख का करें, सुख का करें न करें, ये हमारी मर्जी की बात है। ये मार्मिक बात ये कही जाती है, ध्यान देंगे उसमें आप लोग। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति कर्मों का फल है, सुख दुख कर्मों का फल नहीं है। किसी भी क्या फर्क आया, जैसे अनुकूल परिस्थिति आई, धन है, संपत्ति है, वैभव है, पुत्र है, स्त्री है, मकान है, रुपये पैसे है, ये सब अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो अनुकूल परिस्थिति है वो सेवा करने के लिए है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थिति ये साधन सामग्री है। ये ख्याल करने की बात है कि साधन सामग्री है, अनुकूल परिस्थिति आई है तो सेवा करने के लिए, धन संपत्ति वैभव पद अधिकार योग्यता ये मेरा है, ये अपना सुख भोगने के लिए नहीं मेरा है। मनुष्य शरीर है, भोग योनि नहीं है, ये ऐसे 84 लाख जोड़ी में घूमे तो उसके लिए तो कर्म योनि है, और सभी मनुष्य है, सावधान है, उनके लिए साधन योनि है। तो अनुकूल परिस्थिति में उपकार करना, धन मिल गया आपको, सी पुत्र संपत्ति मिल गई, सहायता करने वालों को मिल गए, तो उनसे संसार का कल्याण कैसे हो, संसार का हित कैसे हो, दूसरों की उन्नति कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए खर्च कर। और दुखदायी परिस्थिति आ जाए, पुत्र नहीं हुआ, स्त्री नहीं रही, पति नहीं रहा, धन नहीं रहा, ऐसे दुखदायी परिस्थिति आ जाए तो दुखी होने के लिए नहीं है, दुख भोगने के लिए भोग योनि है ही नहीं है। दुख भोगना तो नरकों में जाओ, सुख भोगना तो स्वर्ग में जाओ, और दोनों का उपयोग करना हो तो मंदिर में आओ। तो दुखदायी परिस्थिति आए उस समय में त्याग करना, त्याग दुखदायी में त्याग क्या करेंगे, सुख की इच्छा का। दुखदायी परिस्थिति में मन सुख का चिंतन करता है, भाई सुख हो जाए। अब दुखदायी परिस्थिति में त्याग करना मानो सुख की इच्छा का त्याग करना, अपने सुख चाहिए ही नहीं। बुखार आ गया तो बुखार दूर हो जाए ऐसी इच्छा नहीं, दवाई देना है। इस समय में क्या कर्तव्य है तो आयुर्वेद के अनुसार शुद्ध दवाई का सेवन करना है। तो वो क्यों, कि शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र ने कहा कि ऐसे ऐसी बीमारी हो तो अमुक अमुक दवाई करो, ऐसे आप ऐसे ऐसे करो, तो शास्त्र की आज्ञा अनुसार उसकी सेवा करना है। किसकी, रोग की, रोग भगवान आए, सुखावे से दुखावे आते भगवान है, भगवान के मैं ही हूँ, मेरे सिवाय है ही नहीं कोई, तो सुख रूप से भी भगवान आते, दुख रूप से भगवान आते, तो बीमारी रूप से भगवान आवे तो भगवान के भोग लगाना है दवाई का। दुख मिट जाए, बीमारी मिट जाए ये नहीं, भावना चाहिए भगवान के भोग लगाना। तो भगवान के भोग कौन सी चीज का लगेगा भाई, कि तो भोग के पास है, पित्त है, कफज है, द्वंद्व है, संनिपात है, क्या है, बीमारी कैसी है, तो उसके अनुसार उनकी जो दवाई है वो भगवान के भोग लगाना है। ऐसा भगवान का रूप हो, ऐसा बुखार हो तो अमुक अमुक दवाई का भोग लगाओ। अब भोग लगाओ तो एक दिन की बात थी, कोई बीमार था, तो उसी बीजी मैंने सामने बात कही, भाई बीमार हो तो दवाई लो, शुद्ध दवाई निर्मल, भगवान के भोग लगाना, भगवान बुखार रूप से आए हैं तो बुखार में दवाई लेंगे, भगवान चले जाएंगे तो चले जाएंगे, इस विचार से नहीं रहना है। जैसे भिक्षु आवे, कोई साधु आ जाए तो उनको भिक्षा दो, कहते भिक्षा दें तो संत चले जाएंगे, तो भिक्षा दे देना चाहिए, किसी को चले जाएंगे। अब चाहे चाहे यहाँ बैठ कर पालो, उनकी मर्जी है, यहाँ बैठ कर पालो और चाहे ले जाओ, जाकर पाओ। ऐसे बुखार आ जाए तो भगवान बुखार रूप से आए हैं, उनकी क्या क्या दवाई है, ऐसा ऐसा बुखार उठ ये दवाई है, ऐसा बुखार उठ ऐसा दवाई है, विश्राम संनिपात के वैद्य की परीक्षा संनिपात में होती है। वैद्य की परीक्षा मानो संनिपात आ जाता है, पेट गले में तीनों भाई वात पित्त कफ तीनों कुपित होते हैं, उपदेश संनिपात में खुदाई, ये तीन हो जाते, तीनों कुपित होते हैं, संनिपात होता है। ऐसे संनिपात 13 तरह के होते हैं संनिपात, तो उन संनिपातों में इनमें संनिपात में ये दवाई देनी चाहिए, तो उस संनिपात रूप भगवान आए तो ये दवाई देनी चाहिए। कौन संनिपात है, ये कंठ मूलक है, ये भुगन है, नरकी है, ये संनिपातों में ना हो तेरा तो ना हो, तो उनमें उसमें उसमें ये दवाई देनी चाहिए। तो संनिपात रूप भगवान पधारे तो उनकी दवाई बोलते हो, अब वो दवाई लेते रहे भगवान बजा देते, यहाँ बैठ कर पाओ महाराज और ले जाना दवाई दे दो, पधार जाओ, मर्जी आपकी है। ऐसा नहीं कि भिक्षु आए जब रोटी जाए तो चले जाएंगे, और चले जाए तो मर्जी उनकी, जावे चाहिए यहाँ बैठ कर पाओ, मर्जी उनकी है, अपना तो काम है गृहस्थ का, घर पर आ जाए तो उसका आदर सत्कार कर देना, भिक्षा दे देना, भिक्षा पावे ले जाए। ऐसे ही बुखार आता है तो बुखार में सेवा करना, इससे से निर्धनता आ गई तो क्या करें कि निर्धन तो खर्चा कम करो। एक बात है मालूम है मनुष्य क्या करता है कि खर्चे को कम न करके और ज्यादा रुपया कमाता है, ज्यादा नहीं तो झूठ कपट बेईमानी करता है क्योंकि खर्चा ज्यादा बढ़ गया। तो ये बढ़िया एक चीज नहीं है, बढ़िया है कि फालतू खर्चा न करे, जैसा करे वैसा ही। एक कहावत आती है बादशाह से भी अखबार, तो बादशाह ने एक रजाई बनवाई, तो रजाई बनवाई तो ओढ़ावे तो रजाई बना दी छोटी, जैसे ओढ़ न सके छोटी रजाई बना दी, तो ओढ़ाओ रजाई तो ओढ़ाओ ऊपर इधर ओढ़ाओ तो पैर या खुले रह जाए, और पैरों की तरफ ओढ़ावे तो सिर भी खुला रह जाए, तो ओढ़ाओ भी रजाई ओढ़ाओ वो ओढ़ावे कैसे ओढ़ाओ पूरी सीख ओढ़ाओ उसी तरह से। कहते महाराज वो कैसे छोटी है, कि भीरबल होता तो उड़ा देता, तुम नहीं उड़ा सकते, भीरबल होता तो उड़ा ही देता। तो महाराज भी समझ लेंगे भीरबल कैसे उड़ा देता, ये तो है ही छोटी तो उड़ा कैसे देता, तो बुलाओ भीरबल को बुलाओ भीरबल उड़ा देगा। बुद्धिमान आदमी हो, बुद्धिमान क्या करेगा भाई, तो भीरबल उड़ा दी, उड़ा दी तो श्रीकंद उड़ा दी, पैर रह गया खाली तो पैर को पकड़ सका दिए, देते पाँव पसारी देती लंबी सौर पाँव उसे ही पसारना चाहिए लंबी सौर हो पर उसे कुछ और जैसा, तो देते पाँव पसारी देती लंबी सौर सौर उतना ही पाँव पसार, ज्यादा क्यों पसारते हो, तो आपने दरिद्रता आ गई तो पाँव ज्यादा मत पसारो। लोग ज्यादा धन कमाने की चेष्टा करते हैं, नहीं झूठ कपट करते हैं, कैसे कुछ काम नहीं चलता, तो भाई उसमें जो कम खर्चे से काम चले खाना पीना आदि तो करना ही पड़ता है, शरीर निर्वाह के लिए करना ही पड़ता है और खर्चा कम कर दो। लोग क्या करते हैं कि धन कमा से अधिक कमाओ झूठ कपट करते हैं, और नहीं तो क्या करते हैं दान पुण्य कम कर दो, दान को नहीं करना चाहिए, वो तो आप गाड़ी के लिए ठीक है, उसको कम मत करो, खर्चे में कम करो, लड़का लड़की की शादी में भोजन में तरह तरह की चीजें बनाओ। हमारे पहले जमाने में हमारी माताएं थी होती थी ना, बड़ी समझदार होती थी, वे क्या करती थी हमने सुना, हमने लोगों से सुना है कि वे क्या करती, तीन चार साग बनाते हैं, तीन चार तरह के साग बनते हैं, फिर बनाए एक तो एक साग एक रोटी बना दी। पूछते हैं आजकल साग कम बनाते हो, हमने सुना है कि दुकान में पैसा कम है, इस वजह साग कम ही रोटी खा ले, एक साग से दो साग खा तीन चार की जरूरत क्या, उससे काम तो चल सकता है, तो जिससे निर्वाह हो जाए उतना तेजी भाव पसारिये जैसी लंबी जोर उतना ही काम करो। तो घर वाले पूछते तब कहते हैं, पर पहले समझ जाते ऐसा नहीं कि आप इतना भोजन बनाएंगे ऐसे लाओ चीज, अगर लाओगे काम है तो काम से लाओ है जैसा है उसके अनुसार चलाओ अपना काम, अभी कम करने से काम करते रहे भूखा रह जाएंगे। अब अलग तैयारी तरह तरह की वो कम तरह की करो तैयारी, पेट भर जाएगा अन्न से और काम ठीक हो जाएगा, और तरह तरह की साग सामग्री न हो तो रोटी कम खाई जाएगी तो कम नहीं खाई जाएगी, भूख तेज हो जाएगी, समझे। धनक से दिव्य विचार अग्नि, जब कम पैदा होती है सामग्री कम होती है झूठ में अग्नि दीप्त हो जाती है, तरह तरह की चीजें खाने से अग्नि मंद हो जाती है, दवाई लेनी पड़ती है, तो क्यों इतनी दवाई ने पहले अपने भोजन में ही संयम रखे तो उसमें भोग लगेगा। थी रूखी रोटी बड़ी मीठी लगती है, समझे, आपने देखा ना होगा हमारे मित्र थे हमारे सहपाठी, वो फुलका खाते थे तो चबाते थे, वो चबाने में वो कहते हैं कि रस आता है, साग की जरूरत नहीं होती, रोटी को ठीक से चबाओ उसमें जायका पैदा होता है, रस पैदा होता है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं साग की, वो साग करे ज्यादा चबा कर खाओ तो भूख लगेगी तेज तेज लगेगी निरोग हो जाएगा। तो जब पैसे कम होते हैं सामग्री तरह तरह कम होती तो दिव्य निधार साधनी, जड़ साधनी दिव्य होती है, उसमें निरोगता आती है, तो इधर फायदा हुआ, उधर कम तरह की चीजें बनाई तो खर्चा तो कम लगा, भूख अच्छी लगी, तो भूख अच्छी लगती है तो रस बनता है, उसे शक्ति आती है, और तरह तरह की चीजें खाते रहो ऊपर आपने, तो उनसे फिर अग्नि कमजोर हो जाती है, कमजोर भूख कम लगती है, उसमें बल कम आता है, रस कम बनता है। तो ऐसे जब कमी आ जाए तो उनमें कैसे काम चले, तो अन्न पीना तो काम चलता नहीं, रूखा सूखा अन्न ज्यादा खाया जाता है। आप लोग नहीं देखो, हम लोग तो भिक्षु है ना, हमारे को अनुभव है इन बातों का, रूखी सूखी रोटी ज्यादा खाते है, दीप्त हो जाती है अग्नि अच्छी तरह से प्रदीप्त हो जाती है, तो काम कम में चल जाता है। तो खर्ची रहती जो फालतू खर्चा है ना, उनकी जरूरत नहीं, सीधी सादी होती है, केवल रोटी हो तो केवल रोटी को चबा कर खाओ, बड़ा रस आता है उसमें, भोजन में एक विलक्षण रस आता है, साग वाग लगा लेने से रोटी का स्वाद नहीं आता, कुछ आते ही नहीं। आप खाकर देख लेना कभी, काम पर है भोजन करते समय खूब पड़ता है, रोटी है, बाजरे की रोटी है, ज्वार है, जो है, चना है, कोई रोटी आप चबाओ, थोड़ी चबाने के बाद उनमें रस रस पैदा होता है, पीता पैदा होती है, बड़ा सुंदर। साग से नहीं, साग से बिगड़ जाती है, साग साथ लेने से। हमारे सज्जन थे, वो कहा करते कि अपन रोटी कैसे खाने, जो धाड़ी में सामने आया है साग है तो साग साग पा लिया, रोटी आई रोटी भी पा ली, कहीं दूसरा उसको पा लिया, साग साग अलग पागी, रोटी अलग पागी, अरे आज जी में रखा है तुम एक एक पाते गए, एक खत्म हो गया दूसरा पर शुरू कर दिया, दूसरा खत्म हो चौथा शुरू कर दिया, बोले ये मैंने नहीं कहता तुम ऐसा करो, ऐसी बात नहीं है, ऐसे सज्जन थे वो कहते थे, ऐसा करते भी थे, तो ऐसे करो अपना, तो उसमें जरूरत नहीं है कि हमारे बहुत आदमी जरूरत हो, जरूरत भूख मिटाने की है, ये जिह्वा के लिए जो करते हैं ज्यादा वो होता है भोग, और इसकी नहीं किया जाए तो हो जाता है योग, संयम हो जाता है, तो इसमें स्वाद में प्रश्न नहीं, तो अभाव हो जाए तो इस तरह से अपने ठीक तरह से निर्वाह हो जाए, ऐसे काम चलाओ तो उसमें कम करो, तो दरिद्रता आ जाए, कमी आ जाए तो उसमें खर्चा कम करो, और ज्यादा आ जाए तो ज्यादा आ जाए, जब खर्ची का जीवन बना लोगे तो बड़ा दुख पाना पड़ेगा, कभी न हो तो मुश्किल हो जाएगी ना, इस वास्ते उसमें वो तो सही, वो दान पुण्य ज्यादा कर दो, नहीं तो थोड़ा बहुत तो करना ही है, जैसे भोजन कहीं खुराक है ऐसे दान पुण्य करना, घर पर कोई आ जाए अतिथि सत्कार करना वो जरूर करना, अतिथि ऐसे भगनाशक प्रतिनिवृत सही सतस्मी दुष्ट समा पुण्यवादाय गच्छति। देखो गृहस्थ आश्रम एक है पालन करने वाला, उत्पादन करने वाला भी गृहस्थ है, हम गृहस्थों से पैदा होते हैं, तो ब्रह्मचारी गृहस्थों से पैदा होते हैं, गृहस्थों से पलते हैं, और गृहस्थ गृहस्थों से पैदा होते हैं, गृहस्थों से पलते हैं, और वानप्रस्थ गृहस्थों से पैदा गृहस्थों से पलते हैं, और सन्यासी गृहस्थों से पैदा होते हैं गृहस्थों से पलते हैं, तो माँ बाप तो गृहस्थ ही हुए ना, हमें संत आए तो बहुत बार बात याद आती है, बड़ी से सत्संग हो रहा था, ऐसी बढ़िया बात कही जो हमारे याद हो गई हो, बहुत बार कहता हूँ, वो कहते देखो भाई तुम हमारे माँ बाप हो, गृहस्थ है हमारे माँ बाप है, तो हम गृहस्थों से पैदा हुए, इस गृहस्थों से पलते हैं, तो माँ बाप का काम क्या है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, पैदा करना, पालन करना, ये गृहस्थों का काम, तो तुम हमारे माँ बाप हो, इस बात का पालन करते हो, और क्या मत देखो बेटा बेटी तुम ही हो, मैं कहूँ कैसे माँ बाप भी तुम हो और हमारे बेटा बेटी भी तुम ही हो, क्यों हम बीमार पड़ जाए सेवा कौन करे, अब बेटा बेटी करते और कौन करे, अपने लड़का लड़की होते ही मेरी सेवा करे, तो तुम हमारे माँ बाप हो और तुम ही हमारे बेटा बेटी हो, और हम कहाँ से हमारे तुम ही हो, ऐसी बात कही बाबा जी से, नई बात सुनी हमने कि ये तो बड़ी बढ़िया बात बताई, माँ बाप भी तुम हो, ये माँ है ये बाप है, और ये बेटी है आप बेटा है, बूढ़े हो जाए रोगी हो जाए तो हमारी सेवा कौन करेगा, आप ही करोगे तो बेटे बेटी भी आप ही हो और माँ बाप भी आप ही हो। हम बातें बता दें आपको, पूछ नहीं आप, पालन पोषण करो तो आप ही करो, कौन करेगा। और इस तरह से अपने जो परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति में काम करने वाले ये संसार में ग्रस्त आश्रम है ना, ग्रस्त आश्रम साधु संग उपासम धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम धन्यवाद का पात्र है क्यों गृहस्थों से ही पैदा होते हैं, गृहस्थों से ही पालित होते हैं, अंतिम काम गृहस्थी करते हैं। इस वास्ते गृहस्थ के लिए आ जाए अतिथि कोई जिसके आने की तिथि नहीं है, किस दिन आएगा वो, किस दिन आएगा उसका कोई नियम नहीं है, तिथि नहीं है कि भविष्य आएगा, पूर्णिमा को आएगा, बसी बात देना, वो तो अतिथि है जब भूख लगा जाए जाए, भूख से भिक्षा करना, कर कर लेना तो वरना संतों के पदों में आता है, भूख लगा भिक्षा कर लेना। एक संत मिले थे वो कहते महाराज भूख लगा जी क्या भूख सक दो, भिक्षा पा लेते हैं, अगर भिक्षा न मिले तो भूख ही पा लेते हैं, भूख ही पा लेते। बड़ी नई बात सुनी बाबा जी, भूख कैसे पा लेते हो, आज भोजन नहीं करेंगे, आज भोजन कर लिया हमारा भोजन हमने आज तो पा लिया, आज तो हमने पा लिया क्या भूख ही पा ली, भोजन नहीं करेंगे आज, भूख का ही भोजन कर लिया तो नहीं मिले तो भूख को पा रहे, मिला तो भिक्षा पा रहे, तो मिल जा रू, ये संतों की बात है समझे, भोजन पा लिया आज भोजन नहीं करेंगे भाई, आज मिला नहीं। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में है वहां सत्संग होता था, तो उधर से ऋषिकेश से कई संत आ जाते, साधु आ जाते, कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाते, अभी माई हमसे आ जाती सीमित रसोई, दो चार पांच पूरी लिया मैं देख ज्यादा कैसे लावे, अब साधु कई आ गए तो थोड़ा थोड़ा देते 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 उसमें खर्च हो गया तो फिर कम रहता पीछे। तो शेठ जी ने कहा था गोविंदा जी ने कि नहीं कम रहे तो अपना उपवास करो, 12 महीनों का उपवास करो, 12 महीने के 24 एकादशी, एक दो अधिक बार 26 एकादशी करो, उन एकादशियों का मातम होगा, उससे ज्यादा मातम हो जाएगा, जिस दिन कम बचे उस दिन भोजन कम करो, क्योंकि आज बचा नहीं, अतिथि आ गए अधिक उनको भोजन दे दिया तो भोजन कम करो, तो 12 महीनों की एकादशी का मासम एक दिन हो जाए, हर शाम को ज्यादा पालो, एक टाइम कमरा है ना, आपसे आप आयु जो परिस्थिति है वो जैसा तप है वैसा करने से तप नहीं होता है, मन घनन तप होता है, और वो तपस्या भगवान की दी हुई है, तो इस तरह से कमी में अपना उसमें भी निर्वाह कर लेना, तेते पांव पसारी देती लंबी सो रहे, इस तरह से उससे अपना निर्वाह कर देना, और अधिक हो भाई अधिक आज्ञा देऊ, ऐसी एक विलक्षण बात है। वहाँ एक देवदीत जी सज्जन रहते कटनी वाले बर्दी से रहते थे वहाँ, तो वो एक दिन बात सुनी बड़ी विलक्षण, दूध की बंदी की हुई थी, तो बंदी दूध जाकर बंदी लिया था अपना जितना दूध है उसे है, तो एक दिन महाराज गए वो तो दूध दौड़े वाले कहते आज तो दूध अधिक होगा गाय के, आज दूध अधिक हो गया तो अधिक दे दो पैसा दे देंगे, लिखो था भाई आज है तो अधिक ले गए, वो कहते थे वो अधिक ले गए, आया तो एक आदमी बैठा था अच्छे को उसको जरूरत अच्छे की तो अधिक आदमी उसको दे दिया, अब नजारे किसके लिए कौन आया है ये पता तो लगता नहीं, तो ऐसा होता है उसके लिए होता है तो उसे ले दे दिया अपना, तो इनकी बात है तो हम बस गोविंद तो मैं समझ पाए, तो ऐसा होता है मौका लगता है तो अधिक आता है तो वो किसी के लिए है पता नहीं है, अपने लिए तो अपने पा लिया अधिक हो गया तो किसी के लिए, कोई आ जाता है भूखा आ जाता है रू दे दू, तो इस तरह से अपना है जो मिले उनमें से सबका आदर सत्कार कर दिया, तो अतिथि जिससे भग्नाश हो, अतिथि भग्नाश हो जाए कुछ भी न दिया जाए या अपना कह दिया जाए तो ग्यास प्रतिनिधि घर से लौट जाएगा, अतिथि से लौट जाएगा, अतिथि कोई हट नहीं करेगा कि महाराज नहीं देंगे हम तो इतना आज आज नहीं देंगे, नहीं देखो चला जाएगा, परंतु उसमें पाप लगता, अतिथि जैसे भग्नाश गृहात प्रतिनिवर्तते घर से लौट जाता है, सो सतस्मै दुष्कृतं दत्वा अपना पाप तो दे जाता है और पुण्य माता आगे उसे पुण्य लेकर चला जाता है, वो खाली नहीं जाता, तुम्हारा पुण्य ले जाएगा। आधी रोटी दे दो, एक फड़का दे दो, बस अब आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इतना ही है मगर अब जितनी है रसोई बनी है उतना ही है, कहां से लाऊं, अभी है नहीं इतना है, वो साधु उसमें संतोष कर देता है अपना। तो गृहस्थ का धर्म का पालन हो जाए, उसमें भरपेट देने से ऐसा खाजा नहीं है, अपनी जितनी है निरसलते सुगमता से इतना दे दो। आप यहाँ रहते हो तो भरपेट पालो, और वो भोजन के समय आए तो थोड़ा दे दो। आप घर बहू आती है तो रोटी खाती है कि नहीं, आए हुए है तो आए हुए खाते तो है ही, अब वो ठहरती है यहाँ तो भर पेट दो, अरे बाबा जी आए दे चले जाए तो थोड़ी दे दो, क्योंकि और भी जाएंगी और भी वास्ते उनका आदर सत्कार करना सबका आए हुआ का, तो ये गृहस्थ का धर्म है। तो दुख आ जाए, मानो दुखदायी परिस्थिति आ जाए, तो उसमें अपने दुखदायी में भी संतोष करना बहुत है, जितना मिल जाए उतना का करे। संतोष आज अनुत्तम सुख लाभ, संतोष तुल्यम निधि अस्ति नान्यत्, संतोष के समान कोई निधि खजाना नहीं है, भगवान की इच्छा हो गई ठीक है आज इतने पाएगा, संत लोग कैसे आज भिक्षा ही पा लेंगे, भूख ही पा लेंगे। तो सुखदायी और दुखदायी दोनों परिस्थिति साधन सामग्री है, सुख दुख सामग्री नहीं है। सुख दुख सामग्री तो भोगी के लिए होता है, गृहस्थ आश्रम भोगी नहीं है, ये योगी है, भाई योग हो कोई क्या हो, अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का हो, और उसमें जो कुछ मिले उसे निर्वाह करना, और क्या करना बताओ। स्वाद और सुखी देने समय और पैसा बर्बाद नहीं करना है, निर्वाह मात्र, तो निर्वाह मात्र करने वाले को पाप नहीं लगता। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, गीता में आया है कि शरीर निर्वाह मात्र के भोजन करने से उतने ही काम करने से उसको पाप नहीं लगता, तो निर्वाह करने का तो पहले है, प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्रशी रघुवीर, तो प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, माताओं के दूध पैदा पहले होता है बच्चा होता है, आप हम जन्म से बहना भाई हमें माँ के जन्म लेते हैं तो माँ के दूध पैदा पहले होता है, बच्चा पैदा पीछे होता है। इस बात से तो माताएं होती है पहला दूध बच्चों को नहीं पिलाती, पहला दूध है नहीं वो निकाल देती, वो घाटा हो जाता है, तो बच्चा फिर पैदा हो दूध पैदा हो गया पहले पहले पैदा हो गए तो गाढ़ा हो जाता, गाढ़ा बच्चे भी पचा नहीं सकता, तो इस वजह से पहले दूध निकालते वो पीने लायक नहीं होता, पीछे दूध आता ताजा वो बच्चों को पिला दे, पहला निकाल करके खील निकालते, खील कैसे निकाल दिया, तो वो इससे सिद्ध क्या हुआ कि बच्चे से पहला दूध पैदा हुआ, नहीं तो वो खील कहे बनी, वो गाढ़ा कहे से हुआ पहले ताजा। तो भगवान के यहाँ प्रबंध है, प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले से होगी, निर्वाह की चीज भगवान ने पहले कर दी है, ये पंडाल ये बिछोना पहले होता है पीछे सत्संग लोग आते हैं, ऐसा नहीं सत्संग आगे लाओ ये पंडाल भराओ क्यों लोग आ गए, अरे सत्संग करना तो पहले भराओ। तो आपके भी प्रबंध पहले होता है आदमी आते हैं उनसे, तो भगवान ने इतनी गफलत है जो आप पैदा तो हो गए आपके लिए अन्य पैसा पीछे पैदा होगा पहले होगा। आज लोग कहते हैं सृष्टि बढ़ गई जो क्या करे क्या बढ़े लूट लगो अब क्या करोगे नसबंदी करो अब क्या करो ऑपरेशन कर दो, महान मूर्खता है और बड़ा भारी पाप, मूर्खता कोई नहीं है पाप का असर है, गर्व गिरा देते हैं बहुत बड़ी भाई अंदर से ही बात है, घर भी गिरावट जिसमें बच्चियों को गिरा लड़कियों को, स्त्री जाति की हिमायती गलत है कि ऋषियों ने स्त्रियों को ठीक नहीं लिखा, वो कहते हैं कुमार अवस्था में तो पिता माता के वश में रहे, जवान में पति के वश में रहे, फिर पुत्र के वश में रहे, मनु ने लिखा है बड़े अन्याचार अत्याचार किया है, ऐसा नहीं स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, और गर्भ गिरा स्त्री का तो कहां तक ये ठीक है आप सोच लो भाई, ये मातृ हत्या है, मातृ हत्या ये मातृशक्ति है, ये स्त्री शक्ति है मातृशक्ति है, माँ है ये पुरुषों की सबकी माँ यही है, समझे। तो मातृशुद्धि का अपमान नहीं करना चाहिए, गर्भ गिराना, दुष्कार करना बड़ा भारी पाप है, तो ये करना नहीं चाहिए। भगवान सृष्टि पैदा करेंगे तो अन्न भी पैदा करेंगे। जिस देश में वृक्ष ज्यादा होते हैं उसमें वर्षा ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा हो तो अन्न कम पैदा होगा, अन्न उतना ही है। मनुष्य ज्यादा हो तो भाई थोड़े होंगे तो 5,000 आएगा, ज्यादा हो तो कम आएगा। अरे मनुष्य ज्यादा है अन्न पैदा ज्यादा होगा, भगवान के तो ये हिसाब है। इस बात से ये बात महान मूर्खता की है कि मनुष्य कम पैदा करूं जिससे कि लोगों अन्न मिल जाए। जब से ये काम किया है संतति विरोध का, तब से अन्न महंगा हुआ है। आप याद कर लो, हमारे देखी हुई बात है। और जब ऐसा नहीं था, खेती में पाप नहीं करते थे, जानवर को नहीं मारते थे, अनाज पैदा ज्यादा होता था, सस्ता होता था। और जब तक ये संतति विरोध ने किया तो अन्न ज्यादा पैदा और सस्ता रहता था। अब दोनों कर लिया, खेती में जानवरों को मारते हैं, इधर मनुष्यों को कम पैदा करते हैं, महंगी ज्यादा होगी, कम पैदा होता है। कम क्यों कम पैदा होता है कि अंडा खाओ, मछली खाओ, अपने मुर्गा खाओ, तो खा रहे हो सूजन कहते हैं। पशुओं के लिए जरूरत नहीं है कि तुम खा जाओगे उनको, तो अरे पशुओं के लिए जरूरत नहीं है कि पहले तुम खा जाओगे, अरे तुम्हें रहने की जरूरत नहीं, पशुओं को खा लो फिर जरूरत क्या। तो वर्षा कम होगी, अन्न फसल अन्य घास कम पैदा होगा। तो ऐसा वास्ते ऐसा अत्याचार न करे, अपने जैसे है निर्वाह वैसे करे, तो शारीरिक केवल केवल निर्वाह मात्र की दृष्टि से भोजन करता हुआ पाप का भागी नहीं होता। इस तरह से सुख और दुख, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति, सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, ये तो केवल निर्वाह के लिए है। नारायण 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 नारायण।